प्रातः क्लास चल रहा था 31/3/1967 शुक्रवार को चौथे पेज की मध्याध में बात चल रही थी। गेट ऑफ हेवन, इसकी महिमा परम अपार है, क्योंकि बाप आकर के हेवन का गेट खोलते हैं माताओं के द्वारा। इसकी गत और मत यानी वो तो है उनके अक्षर, गत मत न्यारी, परंतु गति तो बाद में होती है, पहले तो होती है मति अर्थात बुद्धि। इसे कहते हैं श्रीमत, पीछे होती है गति, गति और सदगति। और ये गति और मति ये भी अपसाइड डाउन आगे पीछे कर दिया, क्योंकि पहले है सदगति के लिए मत देना। तो देखो कैसे तुम बच्चों को सहज मति देते हैं, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की मत। तो भगवान की मत पर चलना होता है ना, बैरिस्टर की मत पर चलने से बैरिस्टर ही बनेंगे, डॉक्टर की मत पर चलने से डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर रानी बन सकते हैं। और भगवान की मत पर चलने से भगवान और भगवती बनते हैं। और है भी भगवान वाच, क्योंकि मत देने वाला भगवान है, वही मुख से वो वाच करते हैं। अभी सिर्फ ये फर्क होता है कि कौन सा भगवान मत देने वाला, श्री मत देने वाला कौन सा भगवान, इसलिए बाबा ने ये नया दिखलाया है कि भाई ये तो पहले सिद्ध करो कि भगवान किसको कहा जाता है। जो गीता में कहा भगवान वाच, ये बात तो पहले सिद्ध करो। कि मत देने वाला भगवान कौन है? और वो भगवान के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। बोले विदेशी विधर्मी मानते हैं कि भगवान निराकार है। मुसलमान बोलते भी अल्लाह मियां ने ये फरमाया वो फरमाया। अब निराकार भगवान अल्लाह मियां कैसे फरमाएगा? फरमान देने के लिए तो मुख चाहिए ना। तो जो निराकार को मानते हैं उनको भी पता नहीं। कहते हैं खुदा अर्श में रहता है। तो अर्श से फरमान कैसे आएगा? आवाज कैसे आएगा? तो वाणी से परे धाम है, वहां तो वाणी जाती ही नहीं। ये उनको अगर मालूम होता तो इतनी जोर से चिल्लाते भी नहीं अल्लाह। और भारत में कहते हैं भगवान निराकार भी है भगवान साकार भी है। वो निराकार साकार बन करके आता है लेकिन कैसे साकार बनकर आता है? गीता में लिख दिया है कृष्ण का नाम। और कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता। तो भगवान देवता बनाने वाला है या स्वयं देवता है? बनाने वाला है। वो तो देवता से भी ऊंचे है। और भगवान क्या बनाएगा? देवता देवता को जन्म देगा, मनुष्य मनुष्य को जन्म देगा। और भगवान भगवान भगवती बनाएगा। लेकिन कैसे बनाएगा? अभी कई यूरोपियन लोग हैं जो कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। वो तो कहते भी हैं लॉर्ड कृष्ण। बस वो कहते हैं क्योंकि ये फिर भी स्वर्ग के मालिक है ना, लक्ष्मी ना है ना। और भारत में कीर्तन करते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माने जो कृष्ण है वो ही नारायण है, वो स्वर्ग के फिर भी मालिक हैं। स्वर्ग के मालिक तो भगवान भगवती ठहरे। नहीं तो और तभी कौन ठहरे? ब्रह्मलोक में ब्रह्मांड में तो कोई महाराजा महारानी नहीं रखे। ये महाराजा महारानी तो इस दुनिया में होते हैं ना, स्वर्ग भी इसी धरती पर और नरक भी इसी धरती पर। स्वर्ग में होता है सुख, सुख आता है सत्व प्रधानता से। नरक में होता है दुख, नरक आता है तमो प्रधानता से। तो इस धरणी पर सत्व प्रधानता भी होती है, फिर तमो प्रधानता भी होती है। सत्व प्रधान अर्थात नया, नई चीज सुखदाई होती है, पुरानी चीज दुखदाई होती है। तो ये स्वर्ग नरक भी धरती पर हैं। ये धरती जल वायु अग्नि आकाश ये पांचों ही तत्व सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान फिर बाद में तमो प्रधान होती है। तो ये स्वर्ग और वो नरक ये दोनों बातें बिल्कुल न्यारी हैं। कैसे? स्व माने आत्मा, ग माने गया, स्वर्ग का मतलब ही है आत्मिक स्थिति में गया। नरक का मतलब ही है नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। मनुष्य विकारी होता है तो वो नरक ही बनाएगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं हेल और हैविन। तो ये बिल्कुल बुद्धि सहज कहती है और बुद्धि अभी इस दुनिया में सबकी मारी गई है। हेल को लाखों वर्ष हो गया, हेविन को लाखों वर्ष हो गया। कहते हेविन पूरा होने में अभी 40,000 वर्ष। तो बिचारे घोर अंधेरे में हैं, क्योंकि मनुष्यों के पास जो हिस्ट्री है 2,500 साल की है। और हिस्ट्री में समय की गणना बताते हैं, इतने बरस हुआ। संबत भी जितने बनाए, जिसने मनुष्यों ने बनाए हुए हैं, ईसवी संबत हो, मुसलमानों का ख्रिस्त संबत हो, हिंदुओं का विक्रम संबत हो, शक संबत हो, ये सारे ही संबत 2,500 वर्ष के अंदर हैं। मनुष्यों ने जो गणना समय की है ये 2,500 वर्ष से ऊपर की कोई गणना नहीं है। और मनुष्य, मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु का मतलब ये है जिसका मनुआ मन बड़ा चंचल हो, तो चंचल मन स्वर्ग बनाएगा या नरक बनाएगा? नरक बनाएगा। तो बिचारे सब घोर अंधेरे में हैं। अज्ञानता की नींद में हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिनकी हिस्ट्री है वो सभी विदेशी धर्म पिता हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, 2000 वर्ष के अंदर, और सब मनुष्य हैं। कोई को देवता नहीं कहेंगे, ये मनुष्यों की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। देवताओं की हिस्ट्री कोई मनुष्य के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि देवता बनाने वाला तो भगवान है, नर अर्जुन को भगवान ने नारायण बनाया गीता ज्ञान देकर। तो नारायण 16 कला संपूर्ण, देवता भी उनको कहा जाता है जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं। और आज के मनुष्यों में तो कोई कला है ही नहीं, बिचारे कलाहीन हुए पड़े हैं। जैसे चंद्रमा की कला खत्म हो जाती है तो चंद्रमा कैसा दिखाई देता? चंद्रमा में उजाला दिखाई देता या अंधेरा दिखाई देता? अंधेरा दिखाई देता। तो कहते हैं चंद्रमा की कला क्षीण हो गई। ऐसे ही मनुष्यों में आज कलाहीनता आ गई, कला काया चट्ट हो गई। इससे साबित होता है कि इस सृष्टि में जब स्वर्ग था तब 16 कला संपूर्ण थे, और जो पहला देवता 16 कला संपूर्ण था वो कृष्ण गाया हुआ है, नारायण गाया हुआ है। इससे साबित होता है, और कहते भी हैं कृष्ण चंद्र, चंद्रमा का टाइटल देते हैं। इसका मतलब कृष्ण इस मनुष्य सृष्टि की ऐसी पहली देवात्मा है जो चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण भी इस सृष्टि पर बनती है। और ये सृष्टि जब तामसी बनती है तो कलाहीन भी बन जाती है। अभी तुम बच्चों को तो कितना याद है, बस ये अभी ये हैल है। किस लिए? हेल टू हेवन जाने के लिए। तो हेल से निकाल कर हेवन में ले जाने के लिए बाप बैठ करके पवित्र बनाते हैं। ऐसा गुणवान बनाते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा, और फिर पवित्र भी जरूर बनना है ना। तो अभी तुमको जो कुछ भी फुरना है वो ईश्वरीय सेवा की फुरना है। कोई कोई को फुरना होती है ना कि बस अब हम सतो प्रधान कैसे बने, तमो प्रधान बने हैं तो दुखदाई हैं। दुखी तमो प्रधान की पहचान ही है, खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। और सत्व प्रधान की पहचान उल्टी कर दो, खुद भी सुखी रहेगा और दूसरों को भी सुखदायक सुख देगा। तो बाबा ने बताया है कि सदा सुखदायी रहने के लिए क्या करो है, सदा सुख का दाता कौन आत्मा है, कोई है या नहीं है, कौन ये क्या होता है, है? कैसे शिव बाप
बाबा।
ओहो ये तो दो बातें हो गई, शिव बाबा या शिव बाप, शिव बाबा शिव बाप। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है और बाप फादर को कहा जाता है। तो सदा सुखदाई कौन है, शिव बाप जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। भले जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है फिर भी इस सृष्टि पर तो आता है कि नहीं आता है, आता है। और जब आता है तो उसकी वाचा से, उसकी दृष्टि से, उसकी वृत्ति से, वो जिस तन के द्वारा पार्ट बजाता है, उसकी कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई दुख की भावना नहीं हो सकती किसी को। बाकी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर आत्मा जो भी पार्ट बजाती है, आज की तामसी दुनिया में वो सब दुखदायी होते हैं। भले कृष्ण की आत्मा क्यों न हो रही हो सतयुग के आदि में सोलह कला संपूर्ण, वो आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आते आते इंद्रियों का सुख भोगते भोगते कमजोर हो जाती है, दुखी हो जाती है और दुखदायी बन जाती है। तो अब हम सुखदायी बनने के लिए सतो प्रधान कैसे बने, किसकी याद से,
शिव बाबा की
याद से। शिव बाबा ग्रैंडफादर है कि फादर है, ग्रैंडफादर धर्म पिता है, ग्रेट फादर कहे जाते हैं। और ग्रेट फादर्स को भी ग्रेट बनाने वाला कौन है, शिव बाप। फादर्स का भी कोई ग्रेट ग्रैंडफादर होता है या नहीं है, होता है तो जो ग्रैंडफादर होता है वो मनुष्य होता है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला होता है या जन्म मरण के चक्र से न्यारा होता है? ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर फादर जैसे जन्म मरण के चक्र में आने वाले होते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि, ऐसे ही ग्रैंडफादर भी जन्म मरण के चक्र में आने वाला होता है। लेकिन ग्रैंडफादर का भी कोई फादर है? वो कौन? वो शिव। वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है, वो एक ही आत्मा है जो सदा सुखदाई रहकर इस मंच पर पाठ बजाती है। भले तामसी दुनिया में आती है, तमो प्रधान शरीर में आती है, तमो प्रधान मनुष्यों के बीच में आती है, तो भी पाठ कैसा बजाती? सदा सतो प्रधान सुखदाई पाठ बजाती है। तो किसको याद करें? जो हम भी सतो प्रधान बने। ग्रैंडफादर को याद करेंगे कि फादर्स को याद करेंगे? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को, फादर्स देखा जाता है, भले ऊंचे से ऊंचे फादर्स क्यों न हो, जैसे क्राइस्ट 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उसे अपना बाप मानते हैं, फिर भी अभी क्रिश्चियंस तमो प्रधान बने हैं या सतो प्रधान बने? क्योंकि इतने तमो प्रधान दुखदाई हैं कि सारी सृष्टि में थरथल्ला मचाए दिया एटम बम बना करके। दुखदाई हुए या सुखदाई? तो उनका फादर क्रिश्चियंस का फादर कौन? क्राइस्ट। वो भी तमो प्रधान होगा। तो जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब पहले सतो प्रधान होते हैं और लास्ट में तमो प्रधान बनते हैं। उनको याद करेंगे तो क्या बनेंगे? तमो प्रधान बनेंगे। अच्छा, ग्रेट फादर्स की बात छोड़ दो, ग्रेट फादर्स भी जिसको अपने से पहले मानते हैं, आदम को मुसलमान कहते भी हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, आदम खुदा से जुदा नहीं, जो खुदा है वो ही आदम है, इतना ऊंच मानते हैं। खुदा के समकक्ष बताई दिया, तो वो आदम धर्म पिताओं का भी बाप साबित होता है, इसलिए वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, आदम कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो, आदिदेव कहो, सब धर्मों में उसे आदि पुरुष की मान्यता है। जैसे वृक्ष होता है तो उसका आदि कौन? पत्ते, तना, या टहनिया फल है या फूल बीज कौन? बीज को बाप कहा जाता है। वृक्ष का बीज जैसे वृक्ष का बाप हो गया, तो ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है जिसका बीज है आदम। आदम माने आदि, जिससे आदि कोई नहीं, वो सब का आदि, उसको आदि करने वाला कोई नहीं। तो वो आदम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ और जैसा बीज होगा वैसा झाड़ भी होगा। नीम का बीज कड़ुआ तो झाड़ का प्रत्येक अंश कैसा कड़ुआ। इससे साबित होता है कि धर्म पिताएं सुखदाई फिर बाद में दुखदाई। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है धर्म पिताओं का भी बाप है, वो भी आदि में सुखदाई और अंत में दुखदाई। तो न धर्म पिताओं को याद करने से सत्व प्रधान बनेंगे, न धर्म पिताओं के बाप आदम को या ग्रैंड फादर को याद करने से सुखदाई बनेंगे, उसी को याद करने से सुखदाई बनेंगे जो सदा सुखदाई है, सदा कल्याणकारी है, कभी भी किसी का कल्याणकारी बनता ही नहीं। तो देखो पक्का हो गया सत्व प्रधान कैसे बने, किसकी याद से है? जो सदा सत्व प्रधान है उसको कहते हैं सत्य। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उसको पहचान करके फिर याद करेंगे तो हम भी सत्व प्रधान सुखदाई बनेंगे। जितना याद करेंगे उतना सुखदाई बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम सुखदाई बनेंगे। जितना उसे शुद्ध रूप में याद करेंगे, मिक्स रूप में नहीं, अब व्यभिचारी रूप से याद करेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बीच में किसी दूसरे की याद ना आए। कैसी याद? व्यभिचारी याद या अव्यभिचारी याद? एकदम 100% सात्विक याद, जिसमें कोई की भी मिक्सचरिटी न हो, ऐसी याद। क्योंकि वो इस सृष्टि पर जब आता है तो पतितम कामी कांटे में या अप्रवेश करता है और मुकर्रर रूप से आता है, तो दो हुए, एक तमो प्रधान एक सत्व प्रधान, दोनों का मेल हो गया। सत्व प्रधान का और तमो प्रधान का मेल हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा सत्व प्रधान, उससे बड़ा सत्व प्रधान कोई हो ही नहीं सकता, और दुनिया का सबसे बड़ा तामसी, उससे जास्ती तामसी कोई हो ही नहीं सकता। कैसे? जिसमें प्रवेश करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा तामसी कैसे है? अरे उसमें सत्व प्रधान प्रवेश करेगा तो सात्विकी ही बनेगा ना, तामसी क्यों बनेगा है? प्रवेश करने के बाद सात्विक बनना चाहिए, तामसी क्यों बनेगा है? क्योंकि सत्व प्रधान प्रवेश ही इसलिए करता है कि उसके द्वारा सारी दुनिया को सत्व प्रधान बनाए। क्या? सारी दुनिया को सत्व प्रधान बनाए, और इतना 100% सत्व प्रधान बनाए, नई दुनिया बनाए कि जिस नई दुनिया में सब सुखी हो, 100% सुखी, कोई भी दुखी न हो। ये लक्ष्य है सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव का। इस दुनिया में आने का लक्ष्य क्या है? क्या? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का लक्ष्य है। तो जिस तन में मुकर्र रूप से आता है उस तन के द्वारा 100% सत्व प्रधान नई दुनिया बनाए दे, माने नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर दे, तो उसका काम पूरा हुआ या नहीं हुआ है? हुआ ना? नहीं हुआ?
हुआ।
काम पूरा हो गया। वो आया ही था पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए, पुराने मकान को। हर एक बाप अपने बच्चों के सुख के लिए पुराने मकान को तोड़ता है, नई दुनिया नया मकान बनाता है, तो वो भी बेहद का बाप है। अपने बेहद के 500-700 करोड़ बच्चों के लिए नई दुनिया बनाता है, नई दुनिया बनाता है तो काम पूरा हो गया? हो गया ना? काम पूरा हो गया तो वापस जाएगा या बैठा रहेगा है? वापस जाएगा। वो वापस चला जाएगा नई दुनिया बना करके, तो मनुष्य सृष्टि के जिस बड़े बच्चे को नई दुनिया का वर्षा देकर गया, वो नई दुनिया की पालना की सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई है? बड़े बच्चे के ऊपर आ गई। उसको कहा जाता है परमपद। भारतीय शास्त्रों में उस विष्णु को कहा गया है परमपद, जो नई दुनिया में नई राजधानी का मालिक कहा जाता है। तो जो सदा सुखदाई है वो तो चला गया, उसका काम पूरा हुआ तो रहेगा या चला जाएगा? चला गया। फिर सत्ता आ गई बड़े भाई के हाथ में, तो जो बड़ा भाई है वो बाप समान कहा तो जाता है, क्या कहते हैं? बड़ा भाई बाप समान, लेकिन बाप तो नहीं है। क्या अंतर है बाप में और बड़े भाई में? अंतर है कि नहीं? कुछ है? भले मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम खुदा के नूर के समान ही नूर धारण कर लेता है क्या? और खुदा भी जब इस सृष्टि पर आता है तो बोलता है मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। तो कोई बच्चा आप समान बनता भी होगा या नहीं बनता है? जो बनता है वो नई सृष्टि का मालिक हो जाता, नई सृष्टि की पालना करता। फिर ये जो नई सृष्टि है वो नीचे क्यों गिरती है, इसका कारण क्या? कौन बनता है इसका कारण? क्योंकि जिस आत्मा शिव ने आकर के नई सृष्टि बनाने के लिए रास्ता बताया, मत दी, उस मत को किसने धारण किया? सबने धारण किया या किसी एक ने 100% धारण किया? है, एक ने 100% धारण किया। तो जिसने एक मत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 100% धारण कर ली, वो खुदा का नूर जैसा नूर हो गया, बाप समान हो गया। फिर वो बाप समान हो गया तो समान सृष्टि ही रहनी चाहिए ना, सृष्टि नीचे क्यों गिरती है?
सुख भोगते
क्यों? संगम युग में कौन सा सुख भोगते हैं? जब भगवान आता है, जिसे हम सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा भगवान जो ऊंचे से ऊंचे मत देता है, वो संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युगी सृष्टि बनाता है, उसमें कौन सा सुख हमें मिलता है? अति इंद्रिय सुख मिलता है, इंद्रियों से अतीत परे का सुख मिलता है, जिससे ऊंचा 10 इंद्रियों को तो छोड़ो, 11वीं इंद्रिय मन का भी सुख नहीं हो सकता। 11वीं इंद्रिय मन बहुत प्रबल है, 10 इंद्रियों से भी प्रबल है, फिर भी मन का सुख भी उतना पावरफुल नहीं जितना संगम युग में अति इंद्रिय सुख मिलता है श्रेष्ठ। इसलिए भारत के ग्रंथों में गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख अगर पूछना है तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। क्या नाम दिया? गोप गोपी। ये क्या होता है? गुप्त क्या माने? वो सुख एक एक ने गुप्त भोगा, एक दूसरे को पता नहीं चला है? गुप्त क्यों? किस हिसाब से गुप्त? मन बुद्धि से गुप्त। मन का सुख और इंद्रियों का सुख तो वहां होता ही नहीं, वो तो अति इंद्रिय सुख है, इंद्रियों से परे का सुख है, इतनी ऊंची स्टेज का सुख है कि उसकी तुलना सारी सृष्टि में जो भी सुख मिलता है 84 जन्मों में, वो सुख कहीं मिल ही नहीं सकता, अति इंद्रिय सुख। और मिलता किनको है? एक को मिलता है, नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, सबको एक जैसा सुख मिलता है, किसी को कम ज्यादा नहीं, लेकिन वो सुख भोगने वालों को कहा गया गोप और गोपी, जिसका अर्थ होता है गुप्त सुख भोगने वाले। किसके साथ? किसके साथ गुप्त सुख भोगने वाले? किसी के साथ या अकेले? अरे सुख अकेले लिया जाता है या सुख प्रवृत्ति में मिलता है? अकेले तो सन्यासी हो गया, सन्यासियों को क्या सुख होगा? तो किसके साथ सुख लेते हैं वो गोप और गोपी?
अरे यही बात भूल गए,
एक शिव बाबा दूसरा, क्या कहा? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, माना एक के अलावा कोई दूसरा आंखों में न याद आए, दृष्टि ही न जाए एक शिव बाबा के अलावा, वृत्ति न जाए किसी में एक के अलावा और कोई में लगाव न जाए, एक के अलावा और सबके प्रति इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए, ऐसी निरंतर जब याद होगी कि इस दुनिया में सब धोखेबाज, एक भी सच्चा नहीं, जब ये पक्का बुद्धि में बैठ जाएगा तो लगाव किस में जाएगा? एक में अटैचमेंट जावेगा, और जब एक में अटैचमेंट जावेगा तो हमें वो सुख मिलता है। एक कौन? शिव ज्योति बिंदु, क्यों शिव बाबा क्यों? एक शिव ज्योति बिंदु होना चाहिए, हैं? साकार में क्यों? अरे साकार की क्या जरूरत?
बच्चा भी साकार है।
हाँ, प्यार तभी पैदा होता है जब एक जैसे हो दोनों, एक चीटी हो और एक हाथी हो, और दोनों को कहो तुम से इकट्ठे रहो, एक दूसरे से प्यार लो, तो प्यार निभेगा? हैं? कहते हैं एक बहुत गरीब हो और एक बहुत बड़ा साहूकार अरबपति करोड़पति हो तो प्यार स्थायी रहेगा? नहीं रहेगा, समान होना चाहिए। तो जैसे हम निराकार हैं आत्मा और साकार हैं शरीर, ऐसे हमको ऐसा एक चाहिए जो हमारी ही तरह निराकार भी हो, आत्मा निराकार भी हो और साकार भी। लेकिन कैसी आत्मा हो? दुनिया में तो 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, सभी साकारी हैं, सभी निराकारी हैं। तो हमारी बुद्धि में कौन एक टिकना चाहिए?
एक शिव बाबा।
हाँ, एक शिव बाबा फिर कैसा? और भी तो 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, वो उनकी आत्मा भी निराकारी है और उनका शरीर भी साकारी है, तो हमारे ही तरह तो हैं, साकार निराकार का मेल है ना सब, तो उनको क्यों नहीं याद करें? हैं? क्यों? हरेक शरीर रूपी वृक्ष में वो बीज आत्मा है,
सदा सुखदाई देने वाला भाव नहीं है
वो, सदा सुखदाई जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो सदा सुखदाई है, हैं? उसके बच्चे जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं वो सदा सुखदाई हैं। तो जब बच्चे नहीं सदा सुखदाई तो बाप कहाँ से सदा सुखदाई हो जाएगा? हैं? जन्मण के चक्र में ना आने वाला वो तो एक शिव बाप है, लेकिन वो तो बिंदु है, निराकार है, उसको तो साकार शरीर है ही नहीं, वो हमारे जैसा कहाँ है? साकार में आता है, आता है फिर चला जाता है, राजधानी स्थापन करके रहता है क्या? हैं? फिर क्या करें?
समान
है?
एक आत्मा बाप समान बन जाती है।
एक आत्मा बाप समान बन जाती है। क्यों एक आत्मा क्यों बन जाती है, हम क्यों नहीं बन सकते?
ये बड़ा बच्चा
है। हाँ, मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है जो तीनों काल का चक्कर लगा करके तीनों काल को क्रॉस करके रह जाती है। क्या? और कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो तीनों काल को क्रॉस करती हो। जब तीनों काल को क्रॉस करती है तब वो त्रिकाल दर्शित्व का कारण बनती है उसके लिए। वो त्रिकालदर्शी है ना? किसके तीनों काल का दर्शी?
आदि
मध्यंत माने तीनों काल। तो तीनों काल को जानने वाला वो है, लेकिन किसके तीनों काल को जानने वाला वो है? कौन जिसके तीनों कालों को उसने जाना?
बड़े बच्चा।
हाँ, जो बड़ा बच्चा है मनुष्य सृष्टि का वो बाप कहा जाता है, और मनुष्य सृष्टि का वो बाप जो तीनों कालों को क्रॉस करके इस सृष्टि पर ही रहता है, तन से भी और मन बुद्धि से भी रहता है। इसी सृष्टि का वासी है, तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचे से ऊंचे पाठधारी हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ। तो उसको पहचान लें और पहचान करके फिर उसे याद करें। तू कैसे पहचाने? क्या ज्ञान? ज्ञान तो ढेर है। आसाराम बापू का भी ज्ञान है, मुरली का आधार, मुरली मुरली तो ब्रह्मा बाबा ने तेर चलाई, ब्रह्मा बाबा ने खुद मुरली चलाई, सबसे ज्यादा मुरली उन्हीं ने ही सुनी, ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा सुनाई। ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा मुरली सुनी कि नहीं? और सबसे ज्यादा सुनाई भी किसने? ब्रह्मा बाबा ने।
मुरली का रस नहीं जानते?
ब्रह्मा बाबा
मुरली का रस,
ब्रह्मा बाबा मुरली का राज नहीं जानते थे। राज नहीं जानते थे इसका मतलब कि जो राजदार होता है वो बड़ा आदमी कहा जाता है, और जो राज को नहीं जानता वो बच्चा कहा जाता है। क्या? दादा लेखराज वाली आत्मा बल मुरली सुनती थी सबसे जाती, मुरली सबसे जाती सुनाती भी थी, लेकिन उसके राज को नहीं जानती थी। माने वो आत्मा बच्चा बुद्धि थी, इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में हमेशा बोला है कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, क्योंकि भारतवर्ष में बच्चे के रूप में उसकी पूजा होती रही। बड़े रूप में पूजा हुई क्या? बच्चे के रूप में पूजा होती रही। तो जिस बच्चे के रूप में पूजा होती रही वो बच्चा बुद्धि था। जो बच्चा बुद्धि है वो राज को क्या जाने कि क्या गुप्त संबंध होता है दुनिया में। दुनिया में संबंध तो अनेक प्रकार के होते हैं, होते हैं कि नहीं? और भगवान के साथ भी अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते हैं। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू मेरे सब प्रकार के संबंधी हो, भगवान के लिए कहते हैं। तो जो भगवान सब प्रकार का संबंधी है, उन सब प्रकार के संबंधों में कौन सा संबंध है जो मनुष्य सृष्टि में गुप्त रखा जाता है? कोई संबंध है? है? क्या है?
पति पत्नी का
गुप्त संबंध होता है। बाकी जितने भी संबंध है उनको गुप्त रखने की दरकार ही नहीं। तो जो पति पत्नी का संबंध गुप्त संबंध है, वो संबंध भी वो आकर के इस सृष्टि पर जोड़ता है। कोई बांधेली माताएं होती हैं, मन बुद्धि से पूरा जोड़ती हैं, गुप्त संबंध। क्या? मन बुद्धि से ऐसा गुप्त संबंध जोड़ती हैं पति पत्नी का बुद्धि से, कि वो गुप्त संबंध किसी को नहीं बताएंगी, अपने पति को भी नहीं बताती कि मैं उसे कैसे याद करती हूँ, लेकिन याद करती है। तो संकल्पों से शूटिंग होती है या नहीं होती है? संकल्पों से शूटिंग होती है। संकल्प बड़ी चीज है। संकल्प का बीज संगम में डाला तो ब्रॉड ड्रामा में वो बीज वृक्ष जरूर बनेगा। जो जितना याद करेगा, जिस संबंध से याद करेगा, वो ब्रॉड ड्रामा में उसी संबंध से ज्यादा लंबे समय तक, जन्म जन्मांतर वो संबंध पक्के पक्के रूप में उस एक के साथ ही भोगेगा। किसे के साथ? शिव बाबा। क्या नाम दिया?
शिव बाबा।
शिव बाप नहीं, वो आत्माओं का बाप है, वो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं। वो कहता है मेरा एक ही संबंध तुम बच्चों के साथ, तुम बिंदु 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 आत्मा है बच्चे, और मैं तुम्हारा बाप, दूसरा कोई संबंध तुम भाई बहन भी नहीं। भाई 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 भाइयों का मैं बाप, मैं ग्रैंडफादर भी नहीं बनता। मेरे साथ कोई बच्चे का संबंध, जिसे संबंध कहा जाता है, सम माने समान, बंध माने बंधन, समान बंधन, मैं निराकार, बच्चे साकार और निराकार दोनों, संबंध जुटेगा? नहीं जुटेगा। तो मेरा तो संबंध सिर्फ एक है, मैं बिंदु निराकार, तुम बिंदु निराकार, तो बिंदु बिंदु सब भाई भाई और मैं तुम्हारा बाप। हाँ, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ मुकर्रर रूप से, उस तनधारी के द्वारा मैं सर्व संबंध निभा सकता हूँ। बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, माता भी हूँ, टीचर भी हूँ, सब प्रकार के संबंध साकार के द्वारा तुम बच्चे निभा सकते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। क्या? मुझे आत्मा के साथ नहीं। हाँ, मैं आत्मा तुम बच्चों को आकर बताता हूँ कि मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूँ। मैं बिंदु आत्मा तो तुमको भी क्या बना के जाऊंगा? बिंदु। कैसा बिंदु? ऐसा बिंदु कि तुम्हारा शरीर तुम्हें अलग दिखाई दे और तुम आत्मा अलग। क्या? इतने नष्टो मोहा हो जाओ शरीर के साथ। क्या? देह से नष्टो मोहा, देह की इंद्रियों से नष्टो मोहा, देह की इंद्रियों से जो सुख मिलता है उससे भी नष्टो मोहा, और देह के संबंधियों से भी नष्टो मोहा। इस देह के संबंध तो क्या, इस जन्म में संपर्क में भी कोई आत्माएं आई हो थोड़े समय के लिए और बहुत याद आती हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ऐसा मिल जाता है कि थोड़े समय के लिए मिला और वो बुद्धि में ऐसा बस जाता कि भूलता ही नहीं। जैसे लैला मजनू का गायन है, लैला ने मजनू को जीवन में एक बार देखा और जीवन भर उसे याद करती रही। तो ऐसा भी कभी होता है। ब्रह्मवाक्य मुरली में भी है, एक बार की स्मृति जिंदगी भर के लिए स्थायी बनाई जा सकती है। क्या एक बार स्मृति में आ गया तो जिंदगी भर के लिए वो स्मृति स्थायी हो सकती है। मान लो कोई विदेशी बंगाल में आया है और बंगाल में आकर के उसने बंगाली रसगुल्ला खाया, एक दिन रहा बंगाल में और बंगाली रसगुल्ला खाया और उसे बड़ा स्वाद आया, एक दिन के बाद चला गया, फिर कभी लौट के आया ही नहीं, तो क्या याद करता रहेगा? वो रसगुल्ला की स्मृति सदा काल की अंदर बैठ गई ना। तो ऐसे ही जो स्मृति है वो बीज है, संकल्प तैयार करती है, अच्छा संकल्प भी बनता है स्मृति में और बुरा संकल्प भी बनता है। अच्छे संकल्प का बीज डालेंगे तो अच्छा ही अच्छा मिलेगा और बुरे संकल्प का बीज डालेंगे तो बुरा ही बुरा मिलेगा। इसलिए बोला ब्रह्मवाक्य मुरली में बोल दिया, ये संगम युग है, मौजों का युग। कैसा युग? मौजों का युग, आनंद मनाते रहो, आनंद का युग है। जब आनंद का युग है तो बच्चे कभी कभी दुखी क्यों हो जाते हैं? हैं? दुखी होते हैं कि नहीं? लेकिन मौजों का युग है, संगम युग। हाँ, बच्चे पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है उस हिसाब किताब को फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। क्या फौरन फुल स्टॉप लगाएं, जो पूर्व जन्म का ऐसा कोई हिसाब किताब याद आए जो दुखदाई हो, इस जन्म का भी कोई ऐसा हिसाब किताब याद आ जाता है जो मन दुखी हो जाता है तो क्या करें? फुल स्टॉप। एक शिव बाबा, दूसरा बस बिंदु, नो संकल्प एट ऑल, बीज रूप स्टेज, तो क्या होगा? वो जो मौज को नष्ट करने वाला संकल्प है, दुखदाई संकल्प, वो रुक गया। तो अगर ऐसा ज्ञानी है तो वो मौजों का युग मनाएगा, सदा काल मौजों का युग मनाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए परंतु अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में रहना, तुम्हारी मौज को कोई तोड़ न सके। माया तुम्हारी मौज मस्ती को हिला न सके। तब क्या होगा रिजल्ट? 84 जन्मों में तुम लंबे समय तक मौज में रहेंगे या दुखी होंगे? मौज में रहेंगे। तो सतो प्रधान बनना है, ये तो पक्की बात। क्या कहा? सतो प्रधान बनना है, लेकिन बने कैसे? पता लगा कि नहीं है? याद से। किसकी याद से? कुत्ते बिल्लों की याद से? किसकी याद से है? एक शिव बाप। लो अब फिर गड़बड़ी कर दी। शिव बाप नहीं, वो तो आत्माओं का सिर्फ बाप है, वो हमें सदा काल का सुख नहीं दे सकता, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देता है। क्या कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत न्यारी, मत भी न्यारी और गति भी न्यारी। तो किसकी मत न्यारी कहें? उसकी कहें, वो जिसमें आता है मुकर्र रूप से उसकी मत कहें, या वो जिन धर्म पिताओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का उन धर्म संप्रदायों के बीच में वर्षा देता है उन धर्म पिताओं की मत कहें? किसकी ऊंचते ऊंच मत, किसकी श्रेष्ठ मत, श्री मत? आत्मा कौन, कौन सी आत्मा की श्रेष्ठ मत? अरे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाला कौन? मत माने बुद्धि, मत माने रास्ता। कौन
बाबा?
कौन सा बाबा?
शिव
बाबा है। बाबा माने ग्रैंड फादर, ओल्ड को बाबा कहा जाता है, तो शिव बाबा है। शिव हमारा बाबा है या बाप है, क्या है? वो तो बाप है, बाबा कहाँ है? हैं? कौन? शिव बाबा है?
सामने बैठे,
सामने बैठे, लो ये सामने बैठे बाबा भाई। सामने बैठने से थोड़ी हो जाता है, सामने बैठे हैं और अंदर अंदर संकल्प दुश्मनी की चला रहे हैं। क्या अकेले में मिल जाए तो मैं बहुत दुर्गति करूं कि जो याद आए? संकल्प ऐसा चला रहे हैं, संकल्प चला रहे हैं ग्लानी के, संकल्प चल रहा है चल चला रहे हैं विरोध के। तो सन्मुख है?
नहीं,
नहीं। है सन्मुख थोड़ी कहेंगे, वो तो दिखाने का सन्मुख हुआ। असली सन्मुख तो वो है जो अंदर से भी प्यार भरा हो और बाहर से भी प्यार भरा हो, उसको कहेंगे सन्मुख। तो सदा सन्मुख कौन है? उसके किसके सन्मुख? जो श्रेष्ठ मत देने वाला है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला वो है, या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला वो है? है वो बीज रूप बाप, वो आत्माओं का बीज है, मनुष्यों का बीज नहीं है। तो जो आत्माओं का बीज है, आत्मा को बुद्धि कहा जाता है, बुद्धि का वरदान देने वाला वो है, बुद्धिमानों की बुद्धि वो है, वो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि देता है। क्या ऊंचे से ऊंची बुद्धि माने मत देता है, ऊंचे से ऊंचा रास्ता देता है। देता तो है सबको, लेकिन लेने वाले नंबरवार या एक जैसे नंबरवार? तो अव्वल नंबर कौन है? अव्वल नंबर कौन? अव्वल नंबर वो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती लंबा पार्ट बजाने वाला है, उसके मुकाबले लंबा पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहते हुए कोई भी नहीं बजाता। जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी कहा जाता है, उसके त्रिकालदर्शिता का आधार कौन? किसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी?
बड़े बच्चे का आधार।
हाँ, आत्माओं में आत्मा रूपी जो बच्चे हैं, भोगी बच्चे जो हैं, उन भोगी बच्चों के बीच में जो बच्चा सबसे जास्ती लंबी आयु वाला समझो। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तीनों काल के पार्ट को भी क्रॉस करने वाला, उस बच्चे को वो आधार बना लेता है। वो तीनों काल क्रॉस करके जब आता है तब वो त्रिकालदर्शी हुआ। तीनों काल को क्रॉस न करे और पहले ही शरीर छोड़ दे, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये तीनों काल को क्रॉस करके जाते हैं क्या? नहीं, बीच में ही शरीर छोड़ देते। तो जो आत्मा तीनों काल को क्रॉस करने वाली है उसको कहा जाता है कालों का काल। क्या? कालों का काल, महाकाल, जिसको दुनिया में कोई काल खा नहीं सकता, वो सबको खाएगा। लेकिन उसको काल को खाता हुआ देखेगा कोई नहीं, इसलिए वो अकाल मूर्त है। कौन? वो जिसमें प्रवेश करता है। और वो अकाल मूर्त को हम याद करेंगे तो हम भी है अकाल मूर्त तो नहीं बनेंगे, लेकिन औरों के मुकाबले लंबे काल तक षष्ठी रूपी रंगमंच पर रहने वाली आत्मा जरूर बनेंगे। तो बताया सतो प्रधान कैसे बने, कैसे बने? अरे अरे हैं? अरे किसकी याद से?
अकाल नहीं खाता
जिसको, कोई काल नहीं खाता, जो तीनों काल में इस सृष्टि पर मौजूद रहता है उसकी याद से हम भी सतो प्रधान बनेंगे। उससे ज्यादा तमो प्रधान कोई नहीं बनता और उससे ज्यादा सतो प्रधान भी कोई नहीं बनता। जैसे को याद करेंगे वैसे हम भी बनेंगे। तो बताया बाबा ने, तो बताया है क्या? मामेकम याद करो। सतो प्रधान बनने के लिए क्या करो? मामेकम याद करो। किस आत्मा ने बताया?
बाबा ने बताया।
अरे दुनिया में बाबाएं तो बहुत हैं, राम रहीम बाबा, ये कितने बाबा निकल पड़े? हैं?
निराकार का मेल बाबा ने बताया।
आप खुद नहीं कहा निराकार और साकार के मेल बैठे हैं? आपकी आत्मा निराकार, आपका शरीर साकार, आप साकार निराकार का मेल ही तो हैं। तो साकार निराकार मेल इसको याद करें। हैं?
शिव बाप जिसमें प्रवेश है,
शिव बाप जिसमें प्रवेश है, कैसे पता चले? हैं?
ज्ञान देते हैं।
ज्ञान देते हैं, हम समझते हैं आसाराम बापू ज्ञान देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया नई नई बातें, नई नई कथा कहानियां सुनाते हैं, बहुत बहलाते हैं। कितना ज्ञान देते हैं? लाखों करोड़ों की पब्लिक इकट्ठी हो जाती। तो ज्ञान नहीं देते? उनके भक्तों से कहो तो वो कहेंगे हमारे बापूजी जितना बढ़िया ज्ञान देते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं देता।
सुप्रीम सर, आपने मुरली में बोला फरुखाबाद की तरफ विश्व का मालिक को मानते
हैं।
फरुखाबाद की तरफ विश्व का मालिक,
विश्व का मालिक,
विश्व मालिक,
फरुखाबाद की तरफ विश्व के मालिक को मानते हैं। फरुखाबाद वालों से पूछो वो विश्व का मालिक को हमको भी बताओ कौन है, तो फरुखाबाद वाले बताएंगे।
है दुनिया में कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है?
हाँ,
फरुखाबाद में बोला।
हाँ, फरुखाबाद में बोला, ठीक है, मान लिया फरुखाबाद में बोला। लेकिन फर्रुखाबाद में जो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लाखों करोड़ों लोग रहते होंगे, कौन सा व्यक्ति किसको माने विश्व का मालिक?
पहले ज्ञान समझकर,
पहले ज्ञान समझे, किससे ज्ञान समझे?
दूसरों को समझाते हैं।
अरे फर्रुखाबाद में एक साक्षी जी महाराज बाबा हैं, अभी एमपी बन गए हैं।
मुरली का राज पहले समझते हैं।
मुरली, ये मुरली, मुरली क्या हो गई है? ये मुरली कहाँ से आ गई? अरे अभी तक तो यही बताते थे कि फर्रुखाबाद का मालिक, लेकिन फर्रुखाबाद वाले यही नहीं जानते वो मालिक है कौन, कहाँ है। उनसे पूछो तो वो बाहरे हो जाएंगे। हाँ, फर्रुखाबाद के मालिक को तो मानते हैं, लेकिन वो कौन है वो बेचारे खुद ही नहीं जानते। ब्रह्मबाग की मुरली में भी पूछा, फर्रुखाबाद वालों से पूछो वो साकार है मालिक या निराकार है, तो बाहरे हो जाएंगे, बताएंगे नहीं। तो पक्का पक्का बताओ किसको याद करें तो सतो प्रधान बने।
साकार में निराकार बाप का
है,
साकार में निराकार बाप का याद करें।
साकार आप है ना, साकार आप, साकार हैं आप में निराकार आत्मा है। तो अरे एक में वो कौन है एक? मुसीबत तो यही है, वो एक को पहचाने कैसे, कैसे पहचाने? अरे
हैं,
ज्ञान समझाते हैं। अरे दुनिया में जाने कितने बाबाएं हैं, ढेर सारे ज्ञान समझाते हैं।
कोई मनन चिंतन है?
अच्छा, माता जी ये बता रही हैं कि जो कुछ भी मनन चिंतन मंथन न करे, एकदम संकल्पों को फुल स्टॉप कर दे, ब्रेक लगा दे, मनन चिंतन से परे हो जाए, नो संकल्प एट ऑल, ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए, उसे याद करें। क्योंकि जो मनन चिंतन मंथन करेगा, मन का उपयोग करेगा, वो तो मनुष्य हो गया, और मनुष्य भगवान होता नहीं। मनुष्य किसे कहा जाता? जो मनन चिंतन मंथन करे सो मनुष्य, जो मनन चिंतन मंथन न करे वो जानवर। अरे तो जानवर भी तो मनन चिंतन मंथन नहीं करते तो भगवान माने? भारत के शास्त्रों में तो जानवरों को भी भगवान मान लिया है, माचले को भगवान मान लिया, मत्स्य अवतार है, ग्रीव अवतार, शुकर अवतार, सुअर को अवतार मान लिया। तो जानवरों को भगवान मान लें, वो तो मनन चिंतन मंथन नहीं करते, वो मनुष्य नहीं है, और मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, इसलिए हम जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, किसी को भी भगवान मान लेते, चलेगा है? नहीं, मनन चिंतन मंथन कर सकता हो चाहे तो मनन चिंतन मंथन करे, और चाहे तो न करे। मनन चिंतन मंथन करता है इसका मतलब आकारी स्टेज हो गई, और मनन चिंतन मंथन नहीं करता है माने निराकारी स्टेज हो गई। और साकार में ही मन बुद्धि से रमण करता है तो साकारी हो गया। ब्रह्म वाक्य भी है मुरली में, तुम बच्चों को एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में आकारी बनना, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो ये बात देखनी है क्या क्या इस मनुष्य सृष्टि में कोई आत्मा है जो मनन चिंतन मंथन से भी परे स्टेज में चली जाए सूक्ष्म बतनवासी हो जाए ना नहीं नहीं मनन चिंतन की स्टेज से भी पार चली जाए जैसे सूक्ष्म बतनवासी देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मा की मनन चिंतन मंथन की स्टेज बेसिक नॉलेज विष्णु की मनन चिंतन मंथन की स्टेज ब्रह्मा से ऊंची शंकर से नीची और शंकर की मनन चिंतन की स्टेज ऊंची कैसी ऊंची निराकारी स्टेज के बिल्कुल नजदीक निराकारी दुनिया के बिल्कुल नजदीक एक सेकंड में निराकारी बन जाए एक सेकंड में निराकारी स्टेज से नीचे मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आ जाए और एक सेकंड में मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी नीचे साकार इंद्रियों में चाहे तो रमण करे क्या जब चाहे साकारी बने जब चाहे आकारी बने और जब चाहे निराकारी बने अभी भी क्लियर नहीं हुआ कैसे पता लगे कि कौन है एक सेकंड में निराकारी कौन है एक सेकंड में साकारी कौन है एक सेकंड में निराकारी आकारी साकारी कौन है कैसे पता चले ये तो अंदर की चीज है हैं तो पता कैसे चले मुरली में बताया ब्रह्म वाक्य में बता दिया एक्यूरेट याद में रहने वाले के नेत्र निश्चल हो जाएंगे क्या एक्यूरेट याद में रहने वाले के नेत्र स्थिर हो जाएंगे ऐसे 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 इधर से कोई आया इधर से कोई आया ये सब चंचलता नहीं आ सकती निश्चल नेत्र हैं मन निराकारी स्टेज अचल और मनन चिंतन मंथन की स्टेज है तो व्यक्ति की आंखों से देखने से पता लग जाएगा कि वो मनन चिंतन गहरी मनन चिंतन मंथन में है और साकारी स्टेज में है तो आंख साकार को देखेगी इंद्रियों का रुझान भी साकार की तरफ जाएगा कान साकार की बात सुनेंगे निराकारी स्टेज पक्की बनेगी तो कान साकार की बात को भी नहीं सुनेंगे यहाँ तक कि मनन चिंतन मंथन की भी आकारी स्टेज ऐसी होती है कोई कोई फिलॉसफर्स ऐसे मनन चिंतन मंथन में मस्त हो जाते हैं कि कहाँ आवाज हो रही है उन्हें पता ही नहीं लगता तो ये निशानी बताई क्या ये भी बोल दिया तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज बाप को प्रत्यक्ष करेगी क्या तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज अभी ये आंख है आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रही है आप समझ रहे हैं कि ये साकारी है या आकारी है या निराकारी है कैसी आंख है
हैं
तीनों लोग अरे ये आंख आपको अभी देख रही है या नहीं देख रही है देख रही है तो साकारी है या निराकारी या आकारी? साकारी है। और आंख जब ऐसी स्टेज में दिखाई दे कि ये तो हमको जैसे देखते हुए भी नहीं देख रहा है, तो समझ लो या तो आकारी है या तो बिंदु निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज, कोई भी जान सकता है। साकारी साकारी को पकड़ेगा, साकारी आंख साकार को पकड़ेगी। जो निराकारी स्टेज है वो निराकार की याद में रहेगी, आकारी स्टेज है वो नई दुनिया के मनन चिंतन मंथन में रहेगी। नई दुनिया में जाने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है उस सब प्लानिंग में मस्त रहेगी, दूसरों की सेवा में मस्त रहेगी, सेवा के संकल्प चलाएगी, ईश्वरीय सेवा के संकल्प वो भी आकारी, नई दुनिया की प्लानिंग वो भी आकारी, और कुछ भी याद नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई साकारी आंख में याद नहीं, दृष्टि में याद नहीं आता, तो वो है निराकारी। ऐसी निराकारी स्टेज में थोड़ा समय भी अगर कोई टिके, वैसे बाबा तो ये बताते हैं ब्रह्म वाक्य मुरली में कि तुम बच्चों की याद की 8 घंटे की स्टेज तुमको संपन्न बनाई देगी। कैसी स्टेज? 24 घंटे में 8 घंटे निसंकल्प स्टेज रहेगी तो तुम संपन्न बन जाएंगे। निरंतर नहीं, 24 घंटे में अभी याद किया बिंदु, फिर दूसरी बात याद आई, फिर बिंदु याद किया, फिर बिंदु याद करे, फिर बिंदु याद किया, ऐसे बिंदु 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 करते करते 24 घंटे का कलेक्शन करें तो 8 घंटे हो जाए। तो ऐसे 8 घंटे की जो स्मृति का कलेक्शन होगा वो संपन्न बना देगा। अब उसमें किसी का ऐसा भी हो सकता है कि वो लगातार 2-4 मिनट तक निराकारी स्टेज में रहे, कोई संकल्प ना आए, सिर्फ बिंदु ही याद रहे, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, बिंदु बिंदु मिल रहे हैं। जैसे बताया 5 दिसंबर की बात याद है? है? नहीं याद है? याद है? क्या बात थी 5 दिसंबर को? बताया कि निराकार बाप शिव और शिव बाप का बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि का बीज, दोनों की आत्मिक स्टेज का मिलन 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर से पहले कोई भी आत्मा निराकारी स्टेज में स्थिर होकर निराकार बाप से मिलन नहीं मना सकी, वो स्मृति दिवस है सच्चा। ब्राह्मण बच्चे समझते हैं 18 जनवरी स्मृति दिवस है, क्या 18 जनवरी को ब्रह्मा की ज्योति बिंदु आत्मा निराकार ज्योति बिंदु शिव बाप से मिल गई, ब्राह्मण क्या समझते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा की सोल निराकारी स्टेज में नहीं गई, वो सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गई कि निराकारी स्टेज में चली गई, क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गई, निराकारी स्टेज नहीं बनी। निराकारी स्टेज बन जाए तो सूक्ष्म शरीर में बंध ही नहीं सकता। तो 5 दिसंबर बताया, क्या कौन सा 5 दिसंबर, कौन से वर्ष का? नियम ये है कि जंगल कभी जंगल के राजा शेर से खाली नहीं होता, एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आ जाता। अपने भारत की परंपरा में 3 शेर मुख्य हैं, नोटों में 3 शेर दिखाई जाते हैं ना, अशोक की लाट में 3 शेर दिखाते हैं, झंडे में भी 3 शेर दिखाते थे। तो ये 3 शेर कौन हैं? ये 3 शेर हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा की आत्मा जब ज्ञान की दहाड़ इस संसार रूपी जंगल में मारती है तो उस दहाड़ का आमने सामने आकर के मुकाबला कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर पाया। कोई कर पाया? कोई नहीं कर पाया। ऐसे ही ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना के बाद शंकर द्वारा जो निम्न कोटि के ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की नौकरियां गाई हुई हैं, क्या एक कुरी ऊंचे ते ऊंचे सूर्यवंशी और बाकी सब नीचे, तो जो नौकुरियां हैं नीचे वाली उनका विनाश और सूर्यवंशी की स्थापना, क्या सूर्यवंशी आत्माएं लक्ष्मी नारायण संक्षेत्र में संपन्न बनते हैं, पुरुषार्थ संपन्न होता है और सूर्यवंशी की स्थापना हो गई। उनके मन बुद्धि में क्षेत्र में, किनके मन बुद्धि के क्षेत्र में, किनकी मन बुद्धि के धरणी में,
लक्ष्मी
लक्ष्मी और नारायण की मन बुद्धि रूपी धरणी में ये स्थापना हो गई कि मैं आत्मा सूर्यवंशी हूँ। क्या जो गीता में लिखा है कि भगवान आकर के जब ज्ञान देते हैं इस षष्ठी रूपी मंच पर आकर तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देते हैं। किसको देते हैं?
सूर्य
को ज्ञान देते हैं। अरे वो सूर्य है ना, सूर्य सबसे डिटैच होकर रहता है ना, वो स्थूल सूर्य है आकाश का, वो किसी से अटैचमेंट रखता है? ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य है। वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर भी आता है, पार्टी भी बजाता है, संग के रंग में भी आता है, फिर भी किसी के अटैचमेंट में नहीं आता, तो वो है असल ज्ञान सूर्य। लेकिन वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जिसमें आता है उसको अपना अखूट ज्ञान का भंडार का वर्षा देता है। बाप क्या करता है? बाप कुछ करता है कि नहीं बच्चे के लिए? क्या करता है? वर्षा देता है। दुनिया में भी हिस्ट्री उठा के देख लो, राजाओं ने अपने कौन से बच्चे को वर्षा दिया? तो ये परंपरा वो शुरू करता है। वो आता है तो सच्ची रूपी रंग मंच पर जो बड़ा बच्चा प्रैक्टिस करके, क्या प्रैक्टिस? मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, ये पक्की प्रैक्टिस करके जो बच्चा 7 दिन का कोर्स ले ज्ञान का और आत्मिक स्थिति में टिक जाए, तो जिस दिन आत्मिक स्थिति में टिकता है बिंदु बनता है उसी दिन शिव बाप से मेल हो जाता। वो 5 दिसंबर बताया, माना 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, एक शेर गया और 69 में ही दूसरा शेर आ जाता। दूसरा शेर आता है और वो भी क्या करता? वो भी आत्मा को याद करता, आत्मिक स्टेज में टिकता, वो तो है ही मनुष्य सृष्टि का बीज, तो बीज रूप स्टेज में टिकने में उसको देर लगेगी क्या? हैं? नहीं लगेगी, उसका फाउंडेशन ही पक्का होना चाहिए। तो बीज रूप स्टेज में सबसे पहले टिकता है, इसलिए उसकी पहचान भी बता दी। क्या? जिस स्थान पर वो बीज रूप स्टेज में पहले पहले टिकता है पुरुषार्थ करके, उस स्थान का इशारा दे दिया, इशारा दिया इन सभी सेंटर्स में सबसे सब सेंटर्स का बीज अहमदाबाद को कहेंगे। क्या? अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज। अरे ये ईश्वरीय ज्ञान के सेंटर्स तो ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया कि लाखों की तादाद में तुम बच्चों के सेंटर्स खुल जाएंगे, तो उन सब का बीज अहमदाबाद। तो जरूर कोई आत्मा है अहमदाबाद में, जिस आत्मा ने 69 में ही बीज रूप स्टेज धारण करके, वो जो आत्माओं का बाप है उससे मेल मिलाप कर लिया, पक्का मेल हुआ, वो है असली स्मृति दिवस। उसको बताया 5 दिसंबर। तो बीसियों इस तरह की मुरली में पहचान है, जैसे भाई ने बताया फरक्काबाद। अरे दुनिया में इतने देश हैं, इतने देशों में इतने स्टेट्स हैं, राज्य हैं, इतने राज्यों में इतने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाखों की तादाद में दुनिया में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बीच फरक्काबाद का ही नाम क्यों लिया? विश्व के मालिक के हिसाब से सिर्फ फरक्काबाद का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया कि जो विश्व का मालिक है वो फरक्काबाद से प्रत्यक्ष होना है, इसलिए उसका नाम भी है फरक्काबाद। बाद में सारी दुनिया को फर से खा जाएगा। जैसे नेहरू जी थे इलाहाबाद के थे ना, जितने भी इलेक्शन जीते कहां से जीते? इलाहाबाद से जीते ना। जिंदगी में इलाहाबाद के लोगों ने उनको इतना प्रेफरेंस क्यों दिया? है? है? नहीं, इलाहाबाद के लोग जान गए कि इस देश में अगर कोई ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो कौन है? है? जवाहरलाल नेहरू। और सदैव जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से ही जीतते रहे, तो इलाहाबाद में उनका नाम इतना बाला क्यों हो गया? क्योंकि इलाहाबाद में जन्म लिया था, इसलिए इलाहाबाद वालों को इसका फखर था। किसका? नेहरू जी का। ऐसे ही विश्व पिता संसार में जो प्रत्यक्ष होगा उनको, जहां से प्रत्यक्ष होगा, जहां से जन्म लेगा प्रत्यक्षता रूपी जन्म, वहां के लोगों को जब पता चलेगा कि विश्व का पिता हमारे क्षेत्र में पैदा होता है, तो उन्हें फखुर आएगा या नहीं आएगा अपने क्षेत्र का? है? गर्व आएगा या नहीं आएगा? गर्व आ जाएगा। वो गर्व उनका जन्म जन्मांतर चालू रहता है, इसलिए अभी अंतिम जन्म में भी वहां के जो मजदूर हैं भले भाड़ झोंकने वाले मजदूर होंगे, वो भी कहेंगे याद करो मालिक को, याद करो रब को। क्या इतना महत्व तो बढ़ जाता है स्थान का। तो ऐसे ऐसे महावाक्य हैं जो महावाक्य ये साबित करते हैं कि वो निराकार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन से साकार मनुष्य को आकर के अपना ज्ञान का अकूट भंडार का वर्षा सौंप देता है। वो अकूट ज्ञान का भंडारी इस संसार में विष्णु पद का प्राप्तकर्ता बन जाता है, जो परम पद गाया हुआ है शास्त्रों में, उससे बड़ा ऊंचा पद कोई होता ही नहीं। वो परम पदधारी तब एक्ट में आता है संसार में फुल फोर्स से, जब उस परम पदधारी को परम पद देने का रास्ता दिखाने वाला वापस चला जाता है। कौन? शिव बाप। क्यों वापस चला जाता? अरे है उसका काम हो गया, वापस चला जाता। उसका काम है बच्चों के लिए नई दुनिया बनाना, जिस नई दुनिया में बच्चों के लिए सुख ही सुख हो, दुख का नाम निशान न हो, ऐसी नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर दी, वापस चला जाता। इसलिए बोलता भी है। बाप जब आते हैं तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देते हैं। क्या? बाप का आना हुआ, आने का मतलब महाशिवरात्रि यादगार है। उनके प्रैक्टिकल आने का समय कब? जब इस संसार में घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है तब वो आता है, प्रैक्टिकल में आता है। प्रैक्टिकल में आना माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेना। उससे पहले प्रत्यक्ष होकर पार्ट नहीं बजाता। जैसे मां के पेट में बच्चा आता है तो क्या जन्म हो गया?
नहीं,
गुप्त रहता है ना। जब तक प्रत्यक्षता रूपी जन्म न हो, बाहर ना आए संसार में, तब तक कोई नहीं मानता कि बच्चे का जन्म हुआ। और निशानी बता दी ब्रह्म वाक्य में, निशानी बताई क्या? जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने, उसको एवरलास्टिंग पक्का निश्चय बैठ जाए कि मेरा बाप आ गया। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पड़ोसी कान से सुनता है, वहां वहां की आवाज सुनता है ना, तो मुख से बोलता है घर वालों को, पड़ोस में बच्चा आ गया, कहता है ना आ गया। ये तो नहीं कहता कि आवाज तो आती है लेकिन पता नहीं बच्चा आया कि नहीं आया, कहता है नहीं बच्चा आ गया, कानों से सुना और बच्चा आ गया, पक्का हो गया बुद्धि में। ऐसे ही जब जाकर के देखेगा आंखों से तो भी कहेगा बच्चा आ गया। मना प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब होता है तो वो गुप्त नहीं रह सकता संसार में। पहले घर के लोग जानेंगे, फिर पड़ोस के लोग जानेंगे, फिर गांव के लोग जानेंगे, फिर जनपद जानेगा, फिर सारा स्टेट जानेगा, सारा विश्व जानेगा। क्या जानेगा? कि वो बेहद का बाप इस सृष्टि पर आ गया। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारतवासी जानेंगे, नहीं, वो बेहद का बाप है। क्राइस्ट आदि तो हद के बाप हैं, भले 200-250 करोड़ उनको बाप मानते हैं, लेकिन 500-700 करोड़ के तो बाप नहीं है, वो 500-700 करोड़ का बाप है जिसको सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बाप मानेगी, आदम मानेगी, मानेगी, पहचानेगी और उस बाप से गति प्राप्त करेगी। वो देता है मत, उसको क्या, वो क्या देता है मत, और वो क्या करता है गति प्राप्त करता है, पुरुषार्थ में गति तीव्र बना देता है, गति माने तीव्रता, वो लेता है उससे, गति नहीं लेता, गति सदगति वो नहीं देता, वो सदगति देता है, देने वाले के पास खुद भी तो सदगति होनी चाहिए कि नहीं, वो सदगति लेता है, सदगति माने शरीर के साथ शरीर में रहते हुए सुख भोगे दुख न भोगे, तो वो बाप ऐसी सदगति लेता है, वो खुद नहीं लेता तो बच्चों को कहां से देगा, तो क्या देता है, है? गति देता है, मत देता है, वो अकल देता है, बुद्धि देता है, मत माने श्रीमत देता है, वो श्रीमत देता है और वो श्रीमत लेकर के गतिशील पुरुषार्थी बनता है, पुरुषार्थ में गतिवान बनता है। इसलिए एक मुरली में आया है कि शिव बाबा है पुरुषार्थी, क्या शिव बाबा है पुरुषार्थी, अब बताओ वो शिव बाबा पुरुषार्थी है, है? उसको तो पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं, मुरली में आया कि शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, दोनों बोल दिया, तो क्या एक का पुरुषार्थी है और एक कराने वाला है, है? नहीं, न वो करणहार है, करता है, करता है या अकर्ता है, है? अकर्ता है, वो करता नहीं है, वो करणहार नहीं है, वो जिसमें प्रवेश करता है वो करणहार भी है, क्या करता भी है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ संपन्न होने पर फिर बच्चों से कराता भी है, क्या अभी 80 साल हो गए, हो गए ना, ज्ञान सुनते सुनते 80 साल हो गए, हो गए ना, हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति का जो असली पुरुषार्थ है वो कोई बच्चा तन मन धन लगाकर पूरी स्पीड से पुरुषार्थ कर रहा है, 80 साल हो गए, जो बाप का धंधा वो धंधा कर रहा है, अरे
ये कर रहा थे
कौन, वो हमें बता दो कौन है, वो हम भी उसके पीछे पीछे चले जाएं, आपको दिखाई पड़ता है तो हमें बताओ, बताएगा वो ही जो खुद जानेगा, खुद ही पूरा पूरा नहीं जानेगा तो दूसरों को बताएगा, है? तो जाना है तो बताओ कौन है, एक कोई जिम्मा लेगा, हम बताएंगे, बताएगा कोई, कोई नहीं बता सकता, बाप का परिचय बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। कहते हैं हमने भगवान बाप को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, हम भगवान बाप को जानते हैं, हम परिचय दे सकते हैं तुम्हें, लेकिन वास्तव में भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अभी जो बोला कि जो भगवान है जिसको भगवान कहा जाता है जिस भगवान की मत पर चलना होता है, भगवान की मत पर चलने से भगवान भगवती बनते हैं, तो खाली फर्क को पहचानना है कि भगवान वाच कौन है, वो भगवान कौन है जो उवाच करता है, बोलता है मत देने के लिए, और वो भगवान कौन है जो गति सदगति करता है। क्या गति करता है? पुरुषार्थ में गतिवान बनाता है और सदगति करता है। कैसी सदगति? शरीर के साथ गतिवान, शरीर के साथ सुख मिले दुख न मिले, वो सदगति करने वाला है। है वो सदगति करने वाला? नहीं, सदगति करने वाला भगवान अलग और सदमति देने वाला भगवान अलग। सद माने सच्ची, मति माने मत, मत देने वाला अलग आत्मा और गति करने वाला आत्मा अलग। तो गत मत न्यारी, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। तो वो एक है जो मत देने वाला है, जिसे कहते हैं श्रीमत, और दूसरा है गति देने वाला। क्या? श्रीमत पर चलने के लिए, श्रीमत पर दौड़ने के लिए, श्रीमत पर उड़ने के लिए, श्रीमत पर हाई जंप लगाने के लिए गतिशील बनाने वाला भगवान अलग, अलग आत्मा, और मत देने वाला भगवान अलग आत्मा। इस राज को समझना है पहले। और दोनों ही भगवान, चाहे मत देने वाला भगवान हो चाहे गति देने वाला भगवान हो, दोनों का परिचय, दोनों की पहचान भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता। निराकार भगवान का परिचय निराकार के सिवाय कोई दे नहीं सकता, और साकार भगवान का परिचय साकार के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो कितने भगवान हुए? दो हो गए। उन दो में ऊंचे थे ऊंचा भगवंत कौन है? कौन? शिव बाबा। वो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत। क्या? किससे ऊंचा? सबसे ऊंचा, धर्म पिताओं से भी ऊंचा। धर्म पिताओं का जो बाप है, ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उससे भी ज्यादा ऊंचा। माने इस मनुष्य सृष्टि के बाप से भी ज्यादा ऊंचा जो मत देने वाला है। मत बड़ी या गत बड़ी?
ऊंचते ऊंचा नीचे नीचा उसके पर होना चाहिए।
नहीं नहीं, सवाल है कि मत बड़ी या गत बड़ी, मत ऊंची या गति ऊंची, क्या चाहिए? ऊंची मत चाहिए या ऊंची गति चाहिए? सदमति चाहिए, सच्ची मति चाहिए या सदगति चाहिए? सदगति चाहिए। अच्छा, सच्ची बुद्धि मिलेगी, सच्ची मत मिलेगी, तब हमारी सदगति होगी। सच्चा रास्ता ही नहीं मिलेगा तो हमारी सदगति होगी नहीं। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव। नाम देते हैं त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस,
है त्रिमूर्ति सर्कल।
हाँ, तो त्रिमूर्ति रोड एक रोड का नाम है या तीन रोड का नाम है? एक रोड का नाम त्रिमूर्ति रोड। त्रिमूर्ति हाउस एक हाउस का नाम है त्रिमूर्ति हाउस या तीन हाउस है? एक है। तो त्रिमूर्ति में एक कौन है जो इस सृष्टि पर जब साकार रूप में प्रत्यक्ष होता है तो तीनों मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होता है, वो एक कौन है? है शिव। शिव शिव के लिए कहें त्रिमूर्ति रोड, शिव के लिए कहें त्रिमूर्ति हाउस, उसको अपना घर है भी। शिव को अगर हम कहें त्रिमूर्ति हाउस, शिव की सोल को कहें तो उसको अपना घर है? है अपना घर तो है ही नहीं, तो फिर कौन है? वो जिसमें प्रवेश करता है। क्या? जिसमें प्रवेश करता है उसमें प्रवेश करके वो है अत्री। आ माने नहीं, त्रि माने तीन, वो तीन नहीं है। क्या? वो तीन नहीं है, एक ही है। अत्रिमुनि का नाम सुना ना? हाँ, और उनकी युगल का नाम अनुसूया, अन असूया। असूया माने ईर्ष्या देश, जिसका कोई से ईर्ष्या देश नहीं। तो वो है, सबको प्यार देने वाले, किसी को ठुकराने वाली नहीं। वो अत्री साकार निराकार का मेल, या सिर्फ निराकार या सिर्फ साकार? है साकार निराकार का मेल है, लेकिन तीन नहीं है। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, और न शंकर है। अत्री और उसकी पत्नी का नाम क्या दिया? अनुसूया। किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, असूया नहीं। जैसे घर में माँ बाप होते हैं, हैं? परिवार में माँ बाप होते हैं, माँ बाप का बाप की मत को अगर बच्चा मानता है तो ठीक, अगर कोई बच्चा नहीं मानता, अवज्ञा करता है हमेशा, तो बाप क्या करता है? मनुष्य सृष्टि में कोई साकार बाप है, उसकी बाप को कोई बच्चा नहीं मानता, ना फरमानी करता है, अवज्ञा करता है, तो बाप क्या करता है? उससे लगातार प्यार से ही पेश आता है, या प्यार व्यार को एक तरफ उठा के रख देगा? क्या करेगा? हैं
घर से बाहर
हाँ निकाल के घर से बाहर करेगा भाग यहाँ और माँ कैसा भी बच्चा है दुष्ट है डकैत है चोर है अपंग है हाथ पांव टूटे हुए हैं बाहर फेंक देगा माँ नहीं फेंकेगी तो शिव जब आता है तो जिस पुरुष तन में भी प्रवेश करेगा भले पुरुष तन है तो अपना काम निकालने के लिए क्या नाम देता है ब्रह्मा जैसे दादा लेखराज का तन था प्रवेश किया 1947 में क्या नाम दिया ब्रह्मा वो तो बाद वाला ब्रह्मा हुआ 1947 का उससे पहले भी कोई ब्रह्मा हो गया ना जिसमें प्रवेश किया था साक्षात्कारों का रहस्य बताया तो जिसमें प्रवेश किया उसका नाम क्या दिया काम निकालने के लिए ब्रह्मा वो ब्रह्मा नामधारी अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो गया इसलिए उसको कहेंगे परम ब्रह्म क्या कहेंगे परम ब्रह्म वो परम ब्रह्म जो है वो ही अनुसुईया कहो या उसे क्या कहो है क्या कहो शिव कहो साकार रूप में सृष्टि चाहिए तो नाम है योगिनी कोई योगी है संसार में तो योगी के साथ योगिनी भी कोई होगी या नहीं होगी है शिव है निराकार क्या है रुद्राक्ष का मणका तो रुद्राक्ष का जो मणका है वो रुद्राक्ष की माला तब बनेगी जब रुद्रगण हो और वो रुद्रगण 11 गाए जाते हैं कितने रुद्रगण 11 रुद्रगण और उनका मुखिया है रुद्र जिसके नाम पर यज्ञ का नाम क्या पड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ उसके बच्चे हैं रुद्रगण 11 और वो उनका बाप साक्षात रुद्र जिसके नाम पर रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ता है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ या विनाशी अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ एक बार ये रुद्र ज्ञान यज्ञ चालू हो गया तो जब तक नई सृष्टि का चौथा आयाम ना आए तामसी स्टेज ना आए तब तक ये यज्ञ चलता ही रहेगा अविनाशी है सृष्टि रूप मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर भले ये रुद्रगण देवता बन जाए सतयुग त्रेता में तो भी सार रूप में ज्ञान रहेगा किस रूप में क्या सार मैं आत्मा ज्योतिबिंदु और फिर द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होगा जिन देवताओं को पहले सिर्फ आत्मा ही याद आती थी क्या
आत्मा
दैहिक अंगों में लगाव नहीं था वो ही देवात्मा जो देह यहां से लेकर के यहां तक एक रूप थी नाभि तक वो देह दो हिस्सों में बट गई द्वैतवादी दुनिया आ गई और वो बुद्धि में बस गई कैसी दुनिया द्वैतवादी देवताओं को कहते हैं अद्वैत आ माने नहीं द्वैत माने दूसरा नहीं दूसरा राजा नहीं दूसरा राज्य नहीं, दूसरा धर्म नहीं, दूसरा धर्म पिता नहीं, दूसरी भाषा नहीं, दूसरा कुल नहीं, दूसरा मत नहीं। सतयुग त्रेता में दूसरा होता है, ये है सतयुग और ये है नाभि तक त्रेता। एक है, दो हिस्से हो गए, एक ही है। फिर उसके बाद द्वापर शुरू हुआ, नाभि से नीचे लेकर के घुटनों तक, यह है द्वापर युग, द्वैतवादी युग। दो दो हो गए, क्या दुनिया में दो दो धर्म पिताएं हो गए, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, इसको कहेंगे द्वैतवादी दुनिया। इस द्वैतवादी दुनिया में दैत्य पैदा होते हैं, क्या अद्वैत से देवताएं, आ माने नहीं, द्वैत माने नहीं, दो नहीं, अद्वैत माने एक को मानने वाले, उनका फाउंडेशन ही है एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो वो अद्वैत माने देवता, और फिर जब द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई तो दो दो धर्म पिताएं, दो दो राज्य, दो दो मतें, ऐसे हो जाता है। तो ये द्वैतवाद जो शुरू हुआ उसका मूल कौन है, द्वैतवाद आरंभ किसने किया, द्वैतवाद का जनक कौन, जनक माने पिता, जन माने जन्म, का माने करने वाला, ये द्वैतवाद का आरंभ करने वाला कौन,
इब्राहिम
है। हाँ बताओ, अरे बताओ, टाइम कम है। हाँ कैसे, ये तो सुन रखा है, है? क्या सुन रखा है, जो राम बनता है सो ही रावण बनता है, है? जो स्वर्ग बनाता है वो ही नरक बनाता है, वो स्वर्ग का भी बाप वो नरक का भी बाप। ब्रह्मबा की मुरली में भी है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या, नहीं है, है? स्वर्ग की दुनिया भी मेरी है, नरक की दुनिया भी मेरी है, कौन कहता है, वो कहता है, वो कहता है, वो नरक की दुनिया बनाता है, वो कौन कहता है, कौन कहता है, है? हाँ, जिस मनुष्य सृष्टि के बीज में आता है वो मनुष्य सृष्टि का बीज त्रिकालदर्शी बनता है, वो बाप बनाता है, क्या वो त्रिकालदर्शित्व का जो सारा वर्षा है वो उसे देता है, वो जानता है कि मैं ही इस मनुष्य सृष्टि का नई दुनिया का बीज और मैं ही पुरानी दुनिया का बीज, कैसे, वो तो फट बुद्धि में से आ जाता है बाहर, क्या, हाँ राम है वो ही द्वैतवादी दुनिया का बीज है, वो ही बाप है, फटाफट बोल दिया, अब कैसे सो भी बता दो, हाँ बताओ, आजकल आजकल जो पब्लिक है किसकी बात ज्यादा सुनती है मानती है, किसकी बात सुनती है मानती है, ज्यादातर पब्लिक के लोग किसकी बात सुनती हैं और मानते भी हैं, है? किसकी,
मीडिया, मीडिया होते हैं,
मीडिया, अखबारों, टीवी चैनल्स, इनकी बात मानते हैं, इनकी बात सुनते हैं, मानते हैं ना, उनकी सुनी सुनाई बातों पर फट से विश्वास कर लेते हैं। और ये भारतवासियों की खास बात बताई, भारतवासियों ने दुर्गति पाई किस बात से? हैं? तो किससे सुना, किससे सुना राम वाली आत्मा दुर्गति करती है? अरे बताओ ना, हैं? बाबा तो कहते हैं रावण दुर्गति करता है, राम दुर्गति करता है? ले, माता कहती नहीं करती, भाई कहता करता है। तो भाई तो नहीं बताता है, तुम्हारी गति मत तुम्हें ही जानो, क्या कैसे दुर्गति करते हो सो तुम्हें ही जानो। तो वो बताता है, ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोला हुआ है। क्या मुसलमान में तो खास प्रसिद्ध है वो कथा, क्या आदम और हव्वा को अल्लाह मियां ने जन्नत बख्शीश दी, जन्नत में भेजा और बता दिया कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। उनका ठीक है, हाँ जा गए। बहुत जन्मों के बाद भूल गए कि अल्लाह ताला ने क्या बताया था, और एक किसमें अज्ञानता आई, इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, इच्छा का बीज किसने बोया है? ईव ने बोया, इच्छा जागृत हुई कि जहां से ये शरीर रूपी विराट पुरुष दो हिस्सों में बंटता है वहां से सुख लेना शुरू करना चाहिए। बस बुद्धि में आया और अपनी इच्छा एडम के सामने, आदम के सामने रख दी कि ऐसा ऐसा करो। अब पुरुष तो बेचारा क्या, पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन होते हैं, क्या पहला दुर्योधन दुशासन कौन बना है? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तो दुर्योधन दुशासनत्व का भी बीज कौन हुआ? अरे वही एक बीज, वो पुरुष की स्त्री कमजोरी होती है, क्या नारी कमजोरी बन जाती है नर की। वो जैसे ही इच्छा करती है, हाव भाव करती है, आकर्षित करती है पुरुष को प्रकृति, तो वो आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित हो जाता है तो वो बॉडी के बीच का फल खाना शुरू कर दिया, रस लेना शुरू कर दिया। वहां से ही द्वैतवाद शुरू हो गया। क्या द्वैतवाद? उससे पहले शेष इंद्रियों से सुख लेते थे, क्या ज्ञान इंद्रियों से सुख लेते थे, वो ज्ञान की इंद्रियां हैं, नाक आंख कान मुंह जिह्वा वगैरह। लेकिन फिर क्या हुआ है? हाँ, देह के अंग जो हैं, जो देह विनाशी है, जिस देह को अज्ञानमय कहा जाता है, ज्ञानमय नहीं है ये शरीर, अज्ञान का पुतला है ये, अज्ञान है पांचों, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, और पांचों विकार भी क्या इन्हीं से पैदा होते हैं, काम क्रोध लोह मोह अहंकार, ये पांच विकार और पांच तत्व, ये दस मिलकर के विकृति है, इस विकृति के संग के रंग में वो आदम आ जाता है। क्यों आ जाता है? किसी ने कुछ बात सुनाई और फट से प्रभावित हो गया। क्यों क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि सृष्टि का जब आदि हुआ था, वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आया था, तो उसने अपना काम निकालने के लिए जिसको नाम दिया परम ब्रह्म, वो तो मनुष्य सृष्टि का बीज ही था। उसको काम मिला क्या? है हाँ, माँ का काम मिला ना, तो माँ उसके मुकाबले वो है परम पुरुष और वो है परम माता। क्या? पर प्रकृति, वो प्रकृति, प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, वो रचयिता, उस रचयिता ने वो रचना रची। जैसे कोई भी पिता माता को रचता है, पहली रचना, उस रचना में उसके मुकाबले अकल कम या ज्यादा? कम, कम अकल है, उसको प्रकृति कहा जाता है, जड़त्व में ही प्रकृति। तो जड़त्व में ही प्रकृति जो है वो जब आर्डर करना शुरू करती है, उसके प्रभाव में वो पुरुष बंधने लगता है, तभी सृष्टि द्वैतवाद की ओर जाती है, विशेष बन जाती है। इसलिए कहा वो अव्वल नंबर का ब्राह्मण भी है, अव्वल नंबर का क्षत्रिय भी है, अव्वल नंबर का विषय विकारी वैश्य भी है, और अव्वल नंबर का कलयुग में शूद्र भी। तो अब बताया, बताओ सत्व प्रधान कैसे बने? सत्व प्रधान बनने के लिए सत्व प्रधान बिंदु को याद करें, या बिंदु जिस लिंग में रखा है बड़े आकार में उसको याद करें? किसको याद करें? है बिंदु को याद करें। अकेले बिंदु को याद किया जा सकता है? है अकेला बिंदु तो याद नहीं आएगा, साकार में निराकार को याद करना। इसका मतलब याद निराकार को करना है, लेकिन आधार जरूर चाहिए। ऐसे नहीं कि आधार को छोड़ दे। आधार माना बड़े रूप में निराकार को याद करें। बड़े रूप को भी याद करेंगे तो भी मना नहीं किया। छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो।
बड़ा,
बड़ा माने लिंग, वो बड़ा रूप है। बिंदु माने आत्मा, वो छोटा रूप है। तो याद किसको करना है? मुझे याद करो। मुझे कहने वाली आत्मा है या जड़ शरीर? मुझे कहने वाली आत्मा है, और वो आत्मा उसके समान बन चुकी, तो याद करने में हर्जा है? है हर्जा नहीं। तो बताया तरीका कि सत्व प्रधान कैसे बने। इस मनुष्य सृष्टि में जो सदाकाल सत्व प्रधान है लंबे से लंबे समय तक, तो कौन है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा याद की शक्ति भरी हुई है उसको याद करे। तो किसमें ज्यादा से ज्यादा याद की शक्ति भरी हुई है? हैं? बड़े रूप में भरी हुई है। बड़ा तो शरीर है जिसमें मनुष्य शक्ति की बीज रूप आत्मा है, वो आत्मा मनुष्य शक्ति का बीज है, लेकिन वो मनुष्य सृष्टि का बीज आत्माओं के बीज को याद करने में सबसे आगे है। क्या? तो याद में ज्यादा आगे है, तो जन्म जन्मांतर की जो उम्र है, एज, वो ज्यादा होगी या थोड़ी होगी? है ज्यादा होगी। जितना याद की शक्ति होगी उतना वो आत्मा सशरूपी रंगमंच पर ज्यादा सुख भोगेगी, ज्ञानेंद्रियों से भी ज्यादा सुख भोगेगी और कर्मेंद्रियों से भी ज्यादा सुख भोगेगी। तो बताया सतो प्रधान बनना है तो इस मनुष्य सृष्टि में कौन है सतो प्रधान? जो सबसे पहले सतो प्रधान बनता है उसको पहचानो और पहचान कर याद करो। ऐसे नहीं इन्होंने कह दिया भगवान आया है जाओ सेंटर में 7 दिन का कोर्स लो, कोर्स लिया बहन जी ने बताया फरक्काबाद चले जाओ कंपिल में चले जाओ भगवान मिल जाएगा। कंपिल में गए भट्टी की उन्होंने भी यही बातें बता दी उसमें आया है उसमें आया है, किसी का नाम ले दिया उसमें आया है वही भगवान है। अपनी बुद्धि से नहीं फैसला किया, फैसला किया क्या? नहीं किया। सुने सुनाए आधार पर भारतवासियों ने दुर्गति पाली, इसलिए अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। ओम शांति।
चित्त कहते हैं बकरी काटने वाले को, जी कहते हैं गोरखपुर में हिंदी बहुत बोली जाती है, मुझे पूछो चित्त किसे कहते हैं? चित्त माने
कसाई कहते
हैं। हाँ
कसाई बकरी
काटने वाले, बकरी काटने वाले को चित्त कहा जाता है। बकरी काटने में
जो बड़े बलवान है बल्ला बलवान पुर,
ऐसे बलवानों का रहने का स्थान पुर कहा जाता है, जैसे कानपुर। क्या अब बकरियां कौन है? बड़े से बड़ी बकरी का नाम क्या है जिसके पीछे सारी बकरियां दौड़ती हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में क्या नाम है उस बकरी का जो करती है मैं ब्रह्मा बाबा तो चले गए अब मैं हूँ जो स्वर्ग स्थापन करूंगी। क्या ब्रह्मा से भी बड़ा विष्णु और विष्णु से भी बड़ा ऊंचा पार्ट बनाने वाली मैं हूँ? क्या शंकर का पार्ट अदा करने वाली, इसलिए मेरा फोटो ऊपर रखो। तो बड़े बड़े फोटो छपाए उनमें नीचे गुलजार दादी, बीच में जानकी दादी, ऊपर ऐसी बकरी जो कहती है मैं करूंगी करने वाली बकरी और उसके पीछे सारे ही चल पड़ती है बोर्ड की हेर। टीवी में कहीं देखा क्या बड़े हाल में आजकल खूब बैठे हैं कि नहीं है? हाँ वो सब मैं करने वाली बकरियां हैं, हम स्वर्ग स्थापन करेंगे। जैसे गांधी जी कह गए क्या राम राज लाएंगे, गांधी जी के फॉलोअर क्या कह रहे हैं? हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को स्वर्ग, भारत में राम राज्य हम लाएंगे। ये सब क्या है? किसकी औलाद है? बकरों की औलाद। ऐसे बकरियों को मारने के लिए जो चिक बने हैं वो चिक बल्लापुर में बहुत जाते हैं। नहीं समझे? ऐसी बकरियों को मारना है, मार काट के खाना है कि चलने देना है? वो सारी दुनिया को गलत रास्ता बताती है कि हम ही भगवान हैं, हम स्वर्ग बनाएंगे, हेवन बनाएंगे।